आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कलीम अहमद। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। इत्तलात नशरियात के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए सख्त कवानीन का मुतालबा किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के रहनुमा हेमंत सोरेन को आज सहपहर झारखंड के वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया जाएगा। जुनूब मगरबी खलीज बंगाल में हवा का कम दबाव अगले 12 घंटे के दौरान शिद्दत इख्तियार करके समुद्री तूफान फिंगल में तब्दील हो जाएगा। गोवा में भारत का 55वां बैन अलावी फिल्म फेस्टिवल आज शाम इख्तिताम पजीर हो रहा है। अमरीका के नव मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रिटायर्ड जनरल केथ केलॉग को यूक्रेन और रूस के खसूसी एलची के तौर पर नामजद किया है। और ओमान के मस्कत में मर्दों के जूनियर एशिया कप हॉकी के इफ्तिताही मैच में दिफाई चैंपियन भारत ने थाईलैंड को 0 के मुकाबले 11 गोल से करारी शिकस्त दी। अब खबरें तफसील से। इत्तलात नशरियात के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए सख्त कवानीन का मुतालबा किया है। लोकसभा में जिमनी सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर बेहयाई के मवाद को रोकने के लिए मौजूदा कवानीन को यकीनी तौर पर मजीद मजबूत बनाने की जरूरत है। जनाब वैष्णव ने कहा कि एक तरफ आज सोशल मीडिया प्रेस की आजादी का एक बहुत बड़ा जरिया है, वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर एडिटोरियल चेक न होने की वजह से कई किस्म का बेहुदा मवाद भी डाला जा रहा है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर मवाद के बारे में जनाब वैष्णव ने कहा कि हमारे मुल्क की सकाफत और उन ममालिक की सकाफत जहां से ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आया है के दरमियान बहुत फर्क है। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट की मुतालिका कायमा कमेटी को इस मामले को उठाना चाहिए और इसके लिए सख्त कवानीन वजा किए जाने चाहिए।
आज सोशल मीडिया एक तरफ से फ्रीडम ऑफ प्रेस का एक बहुत बड़ा माध्यम है, लेकिन साथ ही साथ दूसरी तरफ एक अनकंट्रोल्ड एक्सप्रेशन जिसमें कई तरह के वल्गर कंटेंट वगैरह भी आते हैं। अभी जो एग्जिस्टिंग कानून है माननीय अध्यक्ष जी, उसको निश्चित तौर पर और कड़ा करने की जरूरत है और मैं निवेदन करूंगा इसके ऊपर एक कंसेंसस बने।
वजीर मौसूफ ने कहा कि हुकूमत ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एक्ट के तहत आईटी जवाबी 2021 को नोटिफाई किया है। ये जाब्ते ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के पब्लिशर्स के लिए अखलाकियात का एक जाब्ता फराहम करते हैं, जिसके तहत पब्लिशर्स को कोई ऐसा मवाद मुंतकिल नहीं करना चाहिए जो कानूनी तौर पर ममनू हो और उम्र की बुनियाद पर 5 जुमरों में मवाद की दर्जाबंदी करनी चाहिए। इस जाब्ते में ये बात भी कही गई है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म को उम्र के लिहाज से बच्चों के लिए मवाद को महदूद करने के लिए मुनासिब हिफाजती इकदामात करने चाहिए। जनाब वैष्णव ने कहा कि इस साल मार्च में इत्तलात नशरियात की वजारत ने इस सिलसिले में कार्रवाई की और आईटी एक्ट की दफात के तहत 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को फहश और बेहुदा मवाद शाये करने पर ब्लॉक कर दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के रहनुमा हेमंत सोरेन को आज झारखंड के वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया जाएगा। गवर्नर संतोष कुमार गंगवार शाम 4 बजे रांची के मोरहाबादी मैदान में मुनक़िदा एक तकरीब में जनाब सोरेन को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाएंगे। रांची में नामनिगारों से गुफ्तगू करते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि उन्होंने हलफबरदारी की तकरीब में शिरकत करने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह के अलावा इंडिया ब्लॉक के लीडरों को मदऊ किया है।
झारखंड में चुनाव के बाद नए सरकार का गठन होना है, इसी कार्यक्रम को लेकर के मैं इंडिया गठबंधन के साथियों को हम लोगों ने आमंत्रण दिया है और साथ में अपने देश के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी को भी हमने इस कार्यक्रम में शरीक होने का आग्रह किया है।
हमारे नामनिगार ने खबर दी है कि हलफबरदारी की तकरीब के लिए वसी इंतजाम किए गए हैं।
हेमंत सोरेन आज चौथी मरतबे झारखंड के वजीर आला की हैसियत से हलफ लेंगे। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी, मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी और दिल्ली के साबिक वजीर आला अरविंद केजरीवाल हलफबरदारी की तकरीब में शिरकत करेंगे। उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला अखिलेश यादव और आरजेडी के सीनियर रहनुमा तेजस्वी यादव भी तकरीब में शिरकत करेंगे। तवक्को है कि मेघालय के वजीर आला कुरार संगमा, पंजाब के वजीर आला भगवंत मान और हिमाचल प्रदेश के वजीर आला सुखविंदर सिंह सुक्खू भी हलफबरदारी तकरीब में शिरकत करेंगे। ट्रैफिक जाम से बचने के लिए आज रांची में तमाम स्कूल बंद रहेंगे। रांची से शिल्पी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
मरकजी हुकूमत डाई अमोनियम फास्फेट DAP खाद की तेजी से सप्लाई और मुकामी सतह पर इसकी दस्तियाबी के मसाइल को हल करने को यकीनी बनाने के लिए तमाम जरूरी इकदाम कर रही है। एक बयान में केमिकल्स और खादों की वजारत ने कहा है कि वो इस मसले को हल करने के लिए रियासती हुकूमतों, रेलवेज और खादों की कंपनियों के साथ इश्तराक कर रही है। आलमी सतह पर चैलेंजों के बावजूद रबी सीजन के दौरान 17 लाख टन से ज्यादा DAP भारतीय बंदरगाहों तक लाया गया और इसे अक्टूबर और नवंबर के महीने में रियासतों में तकसीम किया गया। इसके अलावा DAP की तकरीबन 6.5 लाख टन घरेलू पैदावार को भी रियासतों के लिए दस्तियाब कराया गया। कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने फ्रांसीसी और एशिया बहरुल काहिल शराकत दारों से खासतौर पर तीन शोबों में ताउन में इजाफा करने की अपील की है। ये तीन शोबे दो तरफा मुआहदों और कसीर जहती प्लेटफार्मों के जरिए तजारती ताल्लुकात में इजाफा, माहौलियाती तब्दीली जैसे आलमी चैलेंजों से निमटने के लिए तकनीकी ताउन को मजबूत करने और सकाफती और तालीमी तबादलों को फरोग देना है।
India and France are celebrating 75 years of our diplomatic ties and 25 years of our strategic partnership this year. Bilateral trade between India and France in our financial year 2024 ended on March 31st reached $15 billion.
ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने कहा है कि जनूब मगरबी खलीज बंगाल में हवा का कम दबाव अगले 12 घंटे के दौरान शिद्दत इख्तियार करके समुद्री तूफान फेंगल में तब्दील हो जाएगा। IMD ने मजीद कहा है कि ये समुद्री तूफान कराइकल और महाबलीपुरम के दरमियान हफ्ते की सुबह शुमाली तमिलनाडु और पुडुचेरी के साहिलों को पार करेगा। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
मौसमियात के महकमे ने कहा है कि समुद्री तूफान शुमाल मगरब की जानिब बढ़ता रहेगा और ये 30 नवंबर की सुबह को कराइकल और महाबलीपुरम के दरमियान शिमाली तमिलनाडु और पुडुचेरी के साहिलों को पार करेगा। 50 से 60 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का इम्कान है। ये तेज हवाएं 70 किलोमीटर फी घंटे तक भी चल सकती हैं। अगले चंद दिनों में तमिलनाडु के शिमाली जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। चेन्नई और मुजाफाती इलाकों में मौसम ठंडा रहेगा और वक्फे से हल्की बारिश हो सकती है। साहिली जिलों में एहतियाती इकदाम के तौर पर तालीमी इदारे बंद रहेंगे। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
भारतीय साहिली मुहाफिज दस्ते ICG की कौमी बहरी तलाश और बचावकारी मशक और वर्कशॉप सेरेक्स 24 आज से केरला के कोची में मुनक़िद की जाएगी। दिफा के सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह इस दो रोज़ा वर्कशॉप का इफ्तिताह करेंगे। इस वर्कशॉप का मौजू इलाकाई इश्तराक व ताउन के जरिए तलाश और बचावकारी की सलाहियतों में इजाफा करना है।
इस प्रोग्राम में मौसर तलाश और बचाव की कार्रवाई की सलाहियतों और इलाकाई और बैनल अक्वामी समंदरी स्टेक होल्डर्स के दरमियान इश्तराक से मुतालिक इकदामात को मजीद बेहतर बनाने की गरज से सबसे बड़े रियल टाइम सिमुलेशन की नुमाइश की जाएगी। इलाकाई इश्तराक के जरिए तलाश और बचाव की सलाहियतों को मजीद बेहतर बनाने के मौजू पर मबनी सारेक्स के हालिया एडिशन के दौरान रेस्पॉन्स ऑपरेशन से लेकर बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां अहमियत की हामिल होंगी। आज मुख्तलिफ प्रोग्रामों में सीनियर सरकारी और दिफाई अफसरान, मुख्तलिफ शराकत दार और गैर मुल्की मंदूबीन शिरकत करेंगे। कोची से राजमोहन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
मुसल्ला अफवाज और सनत के दरमियान इश्तराक को फरोग देने की खातिर आज से नई दिल्ली में दिफाई शराकत दारी से मुतालिक दिनों के प्रोग्राम का एहतमाम किया जाएगा। वजारत दिफा ने एक बयान में कहा है कि ये दो रोजा प्रोग्राम हुकूमत और कारोबारी शराकत दारों के दरमियान दूरी को खत्म करने, नीज कारोबारियों और हुकूमत के दरमियान और कारोबारियों के दरमियान सिलसिलेवार मीटिंगों के जरिए इंतहाई अहम माहदों में सहूलत पैदा करने के मकसद से तरतीब दिया गया है। वजारत ने कहा है कि 200 से ज्यादा कंपनियां और इस वजारत और मुसल्ला अफवाज के 100 अफसरान जो टेक्नोलॉजी और खरीदारी से मुतालिक मामलात देखते हैं इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। हुकूमत ने कहा है कि पिछले 3 महीने के दौरान तूर और उड़द दालों की कीमतों में कमी आई है या कीमतें मुस्तहकम रही हैं। सारिफिन के उमूर खुराक और सरकारी निजाम तकसीम के मरकजी वजीर ममलिकत BL वर्मा ने यह बात कल लोकसभा में एक सवाल के तहरीरी जवाब में कही। उन्होंने वाजे किया कि खरीफ फसलों की सूरत हाल बेहतर है, मूंग और उड़द जैसी कलील मुद्दती फसलों की कटाई का अमल मुकम्मल हो चुका है जबकि तूर की कटाई अभी शुरू हुई है। 55वें बैन الاقوامی بھارتی فلم فیسٹیول کا آج آخری دن ہے. دن کے آغاز میں فلم ساز رمیش سپی ایک سیشن سے خطاب کریں گے. اس سیشن کا موضوع ہوگا نوجوان اور سینما ایک تخلیقی مستقبل کے لیے خواہش مند افراد کو با اختیار بنانا. بعد میں جناب سپی پیشن فار پرفیکشن رمیش سپی کا فلسفہ کے موضوع پر موہت سونی سے بات چیت کریں گے. بہترین ڈیبیو ڈائریکٹر کے تحت آج منوہر کے کی مکا بننا حقیقی اسکریننگ ہوگی. اس کے بعد آخری فلم ڈرائی سیزن دو تھیٹروں میں دکھائی جائے گی. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
بھارت کا 55واں بین الاقوامی فلم فیسٹیول جو بڑے جوش و خروش کے ساتھ شروع ہوا تھا آج شام ایک زبردست اختتامی تقریب کے ساتھ اختتام پذیر ہو جائے گا. اس فیسٹیول میں مشہور شخصیتوں کی بصیرت افروز ماسٹر کلاسز ہوئیں, ساتھ ہی مختلف زبانوں اور موضوعات پر 180 فلمیں دکھائی گئیں. کریٹو مائنڈز آف ٹومورو چیلنج, جس کا مقصد نوجوانوں کی صلاحیتوں کو فروغ دینا تھا, اور نیٹ ورکنگ اور اشتراک کے اہم مرکز فلم بازار کو اس فیسٹیول میں بڑی اہمیت حاصل رہی. آج کئی باوقار ایوارڈز کا اعلان کیا جائے گا, جس میں گولڈن پیکاک ایوارڈ بھی شامل ہے. گوا سے درگیش بھدوریا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار.
امریکہ کے منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روس اور یوکرین کے لیے خصوصی سفیر کے طور پر ریٹائرڈ امریکی جنرل کیتھ کیلوک کے نام کا اعلان کیا ہے. جنرل کیتھ جناب ٹرمپ کے گزشتہ دور حکومت میں قومی سلامتی سے متعلق انتہائی اہم عہدوں پر خدمات انجام دے چکے ہیں. جناب ٹرمپ نے اسٹینفورڈ کے ڈاکٹر اور ماہر اقتصادیات ڈاکٹر جے بھٹاچاری کو صحت کے قومی ادارے کے ڈائریکٹر کے عہدے کے لیے منتخب کیا ہے. دوسری جانب ٹرمپ انتظامیہ میں اقوام متحدہ کے سفیر کے عہدے اور ماحولیاتی تحفظ کی ایجنسی کے عہدے کے سربراہ کے طور پر منتخب ہونے والی شخصیتوں نے دھمکیاں ملنے کی خبر دی ہے. ایف بی آئی قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں کے ساتھ مل کر ان واقعات کی جانچ کر رہی ہے. کھیلوں میں مردوں کے بھارتی جونیئر ہاکی ٹیم نے کل عمان کی راجدھانی مسقط میں مردوں کی جونیئر ایشیا کپ 2024 کے پہلے میچ میں تھائی لینڈ کو 11-0 سے شکست دی. ارشدیپ سنگھ, شردانند تیواری, دلراج سنگھ, روہت اور مکیش نے ایک ایک گول کر کے ٹیم کو جیت دلائی. شروعات سے ہی بھارتی ٹیم نے اپنا دبدبہ قائم رکھتے ہوئے زبردست کھیل کا مظاہرہ کیا. بھارت کا اگلا مقابلہ آج جاپان سے ہوگا. بیڈمنٹن میں بھارتی کھلاڑی پی وی سندھو اور لکشیہ سین کل لکھنؤ میں جاری سید مودی انٹرنیشنل بی ڈبلیو ایف سپر 300 ٹورنامنٹ کے دوسرے راؤنڈ میں پہنچ گئے ہیں. خواتین سنگلز کے پہلے راؤنڈ میں پی وی سندھو نے 17 سالہ انمول کھرب کو 21-17 اور 21-15 سے ہرا دیا, جبکہ مردوں کے سنگلز میں لکشیہ سین نے ملیشیا کے سولہ عادل کو 21-12 اور 21-12 سے شکست دی. فٹ بال میں بھارتی سپر لیگ میچ میں بنگلورو ایف سی نے محمدن ایس سی کو 2-1 سے شکست دے دی. یہ تھیں خبریں. اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں کونین حیدر.
شکریہ کلیم. قومی راجدھانی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخبارات نے الگ الگ خبروں کو شہ سرخی کے ساتھ شائع کیا ہے. روزنامہ راشٹریہ سہارا نے پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس سے متعلق خبر شائع کرتے ہوئے لکھا ہے کہ دوسرے دن شدید احتجاج اور ہنگامے کی وجہ سے دونوں ایوانوں کی کارروائی ملتوی کر دی گئی. روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر کی اٹلی میں G7 وزرائے خارجہ کے آؤٹ ریچ سیشن میں شرکت کی خبر کو نمایاں کیا ہے. اس دوران وزیر خارجہ نے بھارت بحر الکاہل خطے میں میری ٹائم سیمی کنڈکٹر اور سپلائی چین میں تعاون کی ضرورت سمیت 6 نکات پر روشنی ڈالی. روزنامہ پرتاپ نے بچپن کی شادی کے خلاف سماج کے ہر طبقے میں بیداری پھیلانے کے سلسلے میں چلائی گئی مہم کا ذکر کرتے ہوئے سرخی لگائی ہے کہ خواتین و اطفال کی بہبود کی مرکزی وزیر نے چائلڈ میرج فری انڈیا مہم شروع کی.
خاص خاص خبریں ایک بار پھر. اطلاعات و نشریات کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے سوشل میڈیا اور او ٹی ٹی پلیٹ فارمز کے لیے سخت قوانین کا مطالبہ کیا ہے. جھارکھنڈ مکتی مورچہ کے رہنما ہیمنت سورین کو آج سہ پہر جھارکھنڈ کے وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف دلایا جائے گا. جنوب مغربی خلیج بنگال میں ہوا کا کم دباؤ اگلے 12 گھنٹے کے دوران شدت اختیار کر کے سمندری طوفان فینگل میں تبدیل ہو جائے گا. گوا میں بھارت کا 55واں بین الاقوامی فلم فیسٹیول آج شام اختتام پذیر ہو رہا ہے. امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ریٹائرڈ جنرل کیتھ کیلوک کو یوکرین اور روس کے خصوصی ایلچی کے طور پر نامزد کیا ہے. اور عمان کے مسقط میں مردوں کے جونیئر ایشیا کپ ہاکی کے افتتاحی میچ میں دفاعی چیمپئن بھارت نے تھائی لینڈ کو 0 کے مقابلے 11 گول سے کراری شکست دی. اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا.